ओम शांति। और दादी डे की गुड मॉर्निंग। आज बाहर भी बरसात है तो लगता है कि जब बाबा ने मुरली चलाई होगी तब भी बरसात होगी, इसलिए बाबा ने भी मुरली में बरसात को याद किया है। कि बरसात नहीं पड़ती है तो धरती सूख जाती है, फल फूल नहीं आते हैं, अकाल हो जाता है। ऐसे अगर ज्ञान बरसात भी ना हो, बाबा आकर के ज्ञान बरसात ना करे तो क्या होगा? बाबा कहते हैं अभी सारी दुनिया इसलिए सूख गई है, सुख शांति के फल नहीं रहे हैं, इसलिए बाबा आकर के ज्ञान बरसात करते हैं। साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को सेवा के लिए भी ट्रेंड किया है कि कैसे समझाना है, क्या समझाना है और कैसे बच्चों को विशेष आत्माओं की या आम आदमी के लिए भी समझाने के लिए पॉइंट्स कलेक्ट करनी है। तो आज बाबा ने बरसात और सागर, तो चलो सागर के कंठे पर और बरसात का आनंद लो। इससे मुझे याद आता है दादी जी प्रकृति जीत थे तो हर मौसम का आनंद लेते थे और आनंद दिलवाते भी थे। बरसात का मौसम तो रेनकोट पहनकर सबको ले जाना नक्की झील से चलते चलते और बरसते बरसात में पिकनिक कराना। गर्मी होती थी तो खुले में मुरली, गार्डन में मुरली और ठंडी में गरम गरम हलवा। तो दादी ने कभी वो नहीं कह रहे ऐसा है बरसात बहुत है, ऐसी मौसम है ठंडी बहुत है, लेकिन दादी ने हर मौसम का आनंद लेना सिखाया। तो आज बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं। आज है 26/8/2025। मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए देवी संप्रदाय का बनना है। प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? हमारा कुल सर्वोत्तम है, ब्राह्मण कुल के हैं, तो सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर है, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहां बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना। श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। अब बरसात है और बरसात की बात आती है तो गीत कौन सा बजा होगा? गीत भी वही बजा, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, हमारे लिए तो दोनों बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। जो रूहानी बाप के साथ है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, क्यों? ब्रह्मा बाबा भी तो हमें ज्ञान देते हैं, मुरली सुनाते हैं। बाबा कहे, शिव बाबा जिसको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वो शरीर का पिता, वो आत्माओं का पिता। ये बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं, और ये ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। ये दो बाप का राज भी आज तक हमें किसी ने रियलाइज नहीं कराया, बताया नहीं। जब बाबा आए तब हमें ये सब बातें बताई। जैसे भगवान सबका एक है, ऐसे ज्ञान भी एक दे सकता है। बाकी जो शास्त्र आदि, गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वो कोई ज्ञान नहीं है। उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती है। इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है, कंगाल हो गया है। वो बरसात भी नहीं पड़ती है तो जमीन आदि सब सूख जाती है। वो है भक्ति मार्ग, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है। वहां हमेशा धरनी सब्ज रहती है, कभी सूखती नहीं है। ये है ज्ञान की पढ़ाई। ये पढ़ाई भी है, बरसात भी है, सब कुछ है। बाबा कहे, ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूं, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को न जानने कारण क्या हो गए? ना बाबा को जानते, ना बाबा के कर्तव्य को जानते, तो क्या हो गए? पतित, दुखी, निधन के बन गए। आपस में लड़ते रहते हैं। घर में बाप नहीं होता है, बच्चे लड़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम्हारा बाप है या नहीं है। तो अभी सारी दुनिया में इतनी लड़ाइयां हो रही है, इतने मतभेद है, तो कहेंगे ना, ये बाबा को जानते नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती नहीं है। न जानने कारण इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सद्गति होती है। सर्व का सद्गति दाता एक है, उसको बाबा कहा जाता है। बाबा देखो कितना धीरे धीरे प्यार से दो बाप का रहस्य बताते बताते कहा, ये ज्ञान है और ये आपका पिता है, मैं आपका पिता हूं। इसको बाबा कहा जाता है। ये बोलना भी बाबा ही सिखाते हैं। उनका नाम शिव ही है, उनका नाम कभी बदल नहीं सकता है। भले आजकल तो हजारों लाखों नाम से मंदिर बनते हैं, लेकिन ओरिजिनल नाम शिव है। जब सन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं। अब बाबा धीरे धीरे बच्चों के ऊपर ये बातें लाते हैं, जब सन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं। शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं, यह यहां भारत में ही रिवाज है, विदेशों में ऐसे नहीं है, बाहर में ऐसा नहीं होता है। ये शिव बाबा सभी का माई बाप है। गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, भारत में ही पुकारते हैं, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं, भक्ति मार्ग में सुख घनेरे होते ही नहीं, भक्ति से सुख मिलता नहीं, टेम्परेरी आनंद आता है, वो भजन करते कीर्तन करते थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते, आनंद आ जाता, लेकिन जो सुख चाहिए आत्मा को, अंदर की खुशी चाहिए, वो भक्ति से नहीं मिल सकती। बस कीर्तन किया भजन किया फिर उठ गए तो जैसे थे वैसे ही। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है, वो नई दुनिया है, पुरानी दुनिया में दुख ही होता है। अभी बाबा कहते हैं कि वो जो शादी करते हैं तो नाम बदलता है, यहां भी जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं, परंतु अभी बदलते नहीं है। क्यों? पहले शुरू में बाबा ने सभी बच्चों के बहुत सुंदर सुंदर नाम निकाले, सभी के अच्छे नाम थे। अभी बाबा कहते नाम रख सकते हैं लेकिन रखते नहीं है। क्यों? जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं, परंतु माया जीत लेती है, तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं, इसलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं। तुम बच्चे सर्वोत्तम उच्च कुल वाले हो, उच्च रूहानी सेवा करते हो, यहां बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो, विश्व को तुम पवित्र बनाते हो, तुम हो बाप के मददगार, बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। कैसे मदद करते हैं? श्रीमत पर चलकर, बाबा की श्रीमत पर चलना माना बाबा को मदद करना। ये भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं, पहले हम खुद ही पवित्र बनाते हैं भारत को, फिर उस पवित्र भारत पर राज्य करते हैं, ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं, विराट रूप का चित्र भी है ना, सभी ने देखा है ना विराट रूप का चित्र, देखा? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे, ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सन्मुख होगा। अभी बाबा हमारे सन्मुख है, तो हम सच्चे ब्राह्मण हैं। अभी तुम सन्मुख हो, तुम हरेक प्रजा पिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। हम क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, अर्थात हम ब्रह्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। ये युक्ति है। औलाद समझने से क्या होगा, बाबा ने सभी को ब्राह्मण बनाया, सभी को ब्रह्मा के डायरेक्ट वंशावली बताया कि हम सच्चे ब्राह्मण हैं। ये कौन सी युक्ति है इसमें? इसमें युक्ति है, बाबा ने कहा ना, तुम भारत को पवित्र बनाते हो और पवित्र भारत पर राज्य करते हो। तो बाबा कहते हैं औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं। ये युक्ति है। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आंख नहीं होनी चाहिए। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, जैसे गवर्नमेंट कोई ऑर्डिनेंस निकालती है उसको कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है, उसमें फिर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। तो बाबा भी कहते हैं, बाबा अभी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो, अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। ये पवित्र बनने का ऑर्डिनेंस है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। वहां पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसलिए मुझ बेहद के बाप को तुम बुलाते हो। यह आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते हैं, मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूं, नहीं तो मैं कैसे आऊं, नहीं तो बाबा हमें मिले कैसे, मिलने की विधि भी तो चाहिए। मेरा जन्म दिव्य है, सतयुग में है दैवी गुण वाले देवताएं, इस समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य। यहां के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे, अब दैवी गुण है ही नहीं तो कहां से देवता कहेंगे। थे भले यही मनुष्य देवता, लेकिन अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो ब्राह्मणों को भी नहीं कहेंगे। फिर भले कोई भी नाम हो तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। आजकल तो देवताओं के नाम तो होते ही हैं, किसी का लक्ष्मी नारायण होता है, राम भी होता है, सीता भी होता है। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्यों को श्री कहते हैं, क्योंकि उनको श्री श्री कहते हैं साधु संतों को, और जो मनुष्य होते हैं ना उसके आगे कुछ भी लिखते हैं तो श्री लिखते हैं, एक ही बार, उनका दो बार होता है। क्यों? क्योंकि खुद पवित्र हैं इसलिए श्री श्री कहते हैं। हैं तो मनुष्य, भल विकार में नहीं जाते हैं, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना, तो भविष्य में निर्विकारी दुनिया में राज्य करेंगे। होंगे वहां भी मनुष्य, देवताएं कोई और कोई नहीं है, मनुष्य ही है, लेकिन दैवी गुण वाले होंगे। इस समय आसुरी गुण वाले पतित हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, मूत पलीती कप्पड़ धोए। गुरु नानक भी बाप की महिमा करते हैं। अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने। बाबा के दो काम है, दोनों काम बाबा को ही करने होते हैं। जब विनाश होगा तब तो स्थापना होगी, जब स्थापना हो जाती है फिर विनाश होता है। और जो भी धर्म स्थापक हैं वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, और धर्मों का विनाश नहीं करते तो और धर्म स्थापक और बाबा के विशेष कार्य का बाबा ने कंपैरिजन किया है कि वो केवल धर्म स्थापन करते हैं, दूसरे धर्मों का विनाश नहीं कर सकते। जब बाबा अनेक धर्मों का विनाश कर एक सत धर्म की स्थापना करते हैं, उनों की तो वृद्धि होती रहती है। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं, एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। ड्रामा अनुसार ये होना ही है। बाप कहते हैं, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूं। सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं, ड्रामा में इन सब के वापस जाने की नोंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकते, ये कन्फर्म है। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। ये भी तुम लिख सकते हो कि यह महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो यह लिखो, बाप परम धाम से आए हैं हेविन का उद्घाटन करने। तुम इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हो, बाप हेविन का उद्घाटन करते हैं। बाप कहते हैं, मैं हेविनली गॉड फादर हेविन का उद्घाटन करने आया हूं, बच्चों की ही मदद लेता हूं। स्वर्गवासी बनाने के लिए इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए। इसलिए इतने सबको पावन बनाने के लिए बाबा हम बच्चों की मदद ले रहे हैं, तो कितने बच्चे देखो तैयार हो गए। ढेर आत्माएं हैं, घर घर में तुम ये समझा सकते हो। भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों बाद तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनो। मन मना भव, ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं। बाबा सेवा करने की टैक्ट भी बताते हैं कि डायरेक्ट किसी को नहीं बोलो कि हम भक्ति को नहीं मानते, शास्त्रों को नहीं मानते। बोलो, शास्त्रों को और भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु अभी यह भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, ज्ञान से दिन शुरू होता है। बाप आए हैं सदगति करने, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो समझा सकते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। बाबा ने देखो कितने टीचर तैयार किए हैं। कई लोग कहते हैं ना कि आपने इतने कम समय के अंदर इतना विस्तार कैसे किया, तो बाबा ने हरेक को टीचर बनाया है, हरेक को ज्ञान देना सिखा दिया है, तो इतना विस्तार हो गया। गाया भी जाता है, सतगुरु तारे, बाप को कहा जाता है सच खंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा। झूठ खंड स्थापन करने वाला है रावण। अब जबकि सदगति करने वाला मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे। भक्ति सिखलाने वाले अनेक गुरु लोग हैं, सतगुरु तो एक ही है, कहते भी हैं सतगुरु अकाल, फिर भी अनेक गुरु बनते रहते हैं। सन्यासी उदासी बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद ही कहते हैं सदगुरु अकाल, माना सदगुरु अकाल मूरत एक ही है और जो अकाल मूरत है वही सदगुरु है, अर्थात जिसको काल नहीं खाता। मनुष्य को तो काल खा जाता है। बाप समझाते हैं मन मना भव, उनका फिर है जब साहिब को तो सुख मिले, वो कहते हैं ना जब साहिब तो सुख मिले, माना साहिब को जब करना है। मुख्य दो अक्षर है, बाप कहते हैं मुझे याद करो जब साहिब को, हमारा साहिब है अकाल मूरत। साहिब तो एक है, गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया है कि उनको जपो। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, बाबा ने पहले कहा तुम्हारा है जप साहिब, फिर बाबा और बच्चों को कहते हैं तुमको जपना नहीं है, तुमको तो याद करना है। ये है अजपा जाप, हम जपते नहीं हैं फिर भी हमारा है अजपा जाप। मुख से कुछ बोलो नहीं, शिव शिव भी कहना नहीं है, तुमको तो जाना है शांति धाम। अब बाप को याद करो, अजपा जाप भी एक ही होता है जो बाप सिखलाते हैं। वो कितने घंटे बजाते, आवाज करते, महिमा करते, कहते हैं अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम, लेकिन वो कहते हैं अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं, बस जो लिखा हुआ है या रटा हुआ है वो बोलते रहते हैं। सुख देने वाला तो एक ही बाप है, व्यास भी उनको ही कहेंगे, उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो, अब हमारी चढ़ती कला होती है। सीढ़ी में कलाओं का भी दिखाया है, अपना जो सीढ़ी का चित्र है उसमें हर युग की कलाओं का बताया है। इस समय कोई कला नहीं है, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ऐसे कहते हैं। एक निर्गुण संस्था भी है, उस समय एक निर्गुण बालक की संस्था हुआ करती थी। अब बाप कहते हैं बालक तो महात्मा मिसल होते हैं, उनमें कोई अवगुण नहीं है, उनका फिर नाम रख देते हैं निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं। बाबा कहते निर्गुण बालक की संस्था बनाई, अगर बालक में गुण नहीं है तो बाप में भी नहीं है। सब में अवगुण है, गुणवान सिर्फ देवताएं बनते हैं। नंबर वन अवगुण है कौन सा? आज बाबा ने नंबर वन अवगुण बताया है, नंबर वन अवगुण है जो बाप को नहीं जानते। दूसरा अवगुण है, दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। मनुष्य के ये दो बड़े अवगुण हैं। बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने गोता खाया है, अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूँ। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ जहाँ आत्मा रहती है। ब्रह्मा बाबा के बाजू में बैठ जाते हैं और ज्ञान देते हैं, पता भी नहीं पड़ता है। मैं स्वतंत्र हूँ, बाबा कहते हैं मुझे बंधन नहीं है, मैं कभी भी आता हूँ और चला भी जाता हूँ। इसलिए कभी मुरली में देखेंगे तो ये पता पड़ता है, कभी शुभाबा आकर के मुरली डायरेक्टली बोलते हैं, कभी ब्रह्मा बाबा भी हमें ज्ञान सुनाते हैं। कहाँ भी मैं जा सकता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी जा आ सकता हूँ। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना, शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते, फिर भी बुलाते तो है ना, तो किसको बुलाते हैं? आत्मा को बुलाते हैं। तो बाबा कहते मतलब आत्मा आ सकती है। समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध है, आत्मा को बुलाया जाता है, ये भी ड्रामा में पार्ट है, कभी आती है कभी नहीं भी आती है, कोई बताते हैं कोई नहीं भी बताते हैं। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है, परंतु आत्मा कुछ तो बोलती है, कुछ ज्ञान भी देगी या शब्द भी बोलेगी, लेकिन ये नहीं बताती है कि फलानी जगह मैंने जन्म लिया है। सिर्फ इतना कहेगी हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है, अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे, जो भी यहाँ से जाते हैं बाबा के बच्चे इतना ज्ञान लेकर पुरुषार्थ करके जाते हैं, सेवा करके जाते हैं, तो अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे, बाकी सुख तो है। राजा बनना अच्छा है या दासी बनना अच्छा? कई लोग समझते हैं दास दासी भी बनेंगे लेकिन जाएंगे तो स्वर्ग में, रहेंगे तो राजाओं के महल में। बाबा कहते हैं राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है, दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। अब अपनी बुद्धि को बाबा कलियुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया की ओर ला रहे हैं। एक सत का संग ही पार करता है, बाकी सब डुबोते हैं। बाप तो सबकी जन्म पत्री जानते हैं क्योंकि बाबा के पास तो हर बच्चे के समाचार आते हैं। ये पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं और कहीं ले चलो। अब बाप कहते हैं बीठे बीठे बच्चों मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो, बाबा का बनकर फिर दूसरे के मत पर चलेंगे, परमत पर चलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जब मेरे बने हो तो अब मेरी मत पर चलो। ये दुनिया बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपयों की ठगी होती रहती है। अभी उस समय इतनी थी करप्शन और ठगी, अगर अभी देखेंगे तो उसकी भेंट में कितना हो रहा है। तो अब इस दुनिया से क्या दिल लगाना, अब बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अथा खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में ये है सच्ची गीता। फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा, अभी तुमको ये ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास। फिर है प्रारब्ध, फिर ज्ञान की जरूरत ही नहीं। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाप को जाना है, अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो, जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो वो फिर स्थूल वतन में कहां से आया? शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं ना, तो कहते हैं ना शंकर ने अमरनाथ पर तपस्या की, कथा सुनाई। पहाड़ आदि तो यहां है ना, सूक्ष्म वतन में तो पहाड़ है नहीं, वहां पति तो हो कैसे सकते जो पार्वती को ज्ञान दे? बर्फ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, वह तो कहां भी बना सकते हो। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहां से आई, वो तो समझते उसके साथ थी। उसके साथ पार्वती कहां से आई जो पावन बनाएंगे? ज्ञान तो पावन बनाने के लिए दिया जाता है ना। शंकर कोई परमात्मा नहीं, वो भी देवता है। मनुष्यों को कितना समझाया जाता है फिर भी समझते नहीं। कितना बार 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 उन्हों को बुलाते रहो, समझाते रहो, कोर्स कराते रहो, तो भी जल्दी समझ में आता नहीं। पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। कोई भी वीआईपी आते हैं, सुनते हैं, कॉन्फ्रेंस में आते हैं, चीफ गेस्ट बनते हैं, तो कहते हैं ना आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, सबको लेना चाहिए। तो बाबा क्या कहेगा? जब ऐसे कोई बोलता है तो बाबा क्या बोलते हैं? अरे तुम तो लो, सबको लेनी चाहिए लेकिन तुम तो लो। कहेंगे हमको फुर्सत नहीं। प्रदर्शनी में ये भी लिखना चाहिए कि इस लड़ाई से पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, कि ये प्रदर्शनी का आप उद्घाटन करते हो, बाप स्वर्ग का उद्घाटन करते हैं। विनाश के बाद स्वर्ग का द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था हरेक चित्र में लिखो पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानु वाच्य। पुराने चित्रों में अभी भी लिखा हुआ है, जो भी बड़े बड़े चित्र होते थे त्रिमूर्ति का, गोले का, सीढ़ी का, जाड़ का, इन मुख्य चित्रों में ये जरूर लिखा होता था। त्रिमूर्ति ना लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वो कैसे ज्ञान देंगे? तो त्रिमूर्ति लिखने से क्लियर होता है कि बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये ज्ञान देते हैं। समझाया जाता है यही पहले गोरा था, श्री कृष्ण था, फिर अब सांवरा मनुष्य बना है, अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करतन लागी वार, फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हैं, फिर बाप आकर देवता बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है। कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। युगे युगे कहना रॉन्ग है। लोग कहते हैं ना हर युग में भगवान आते हैं और ये कुछ न कुछ ज्ञान देते हैं। बाप कहते हैं युगे युगे कहना रॉन्ग है। मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूं। फिर रावण तुमको पापात्मा बनाते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नई बनाते हैं। ये समझने की बातें हैं बाबा। बार बार ये अपने को क्लियर किया कि मैं आता हूं, स्वर्ग का उद्घाटन करता हूं, पहले तुमको पवित्र बनाता हूं, फिर पवित्र दुनिया बनती है तो तुम पवित्र दुनिया पर राज्य करते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने लायक बनाना है। दूसरी पॉइंट, दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत का संग करना है। ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है। एक बाप की मत पर ही चलना है। आज बाप दादा का वरदान भी बहुत सुंदर है। अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव। अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव। अब उसका क्लैरिफिकेशन है, जो भी सेवा करते हो उसे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। जैसे भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती है वो यही संकल्प करती है कि सर्व के भले प्रति हो, ऐसे आपका हर संकल्प सेवा में अर्पित हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखो, सर्व प्रति सेवा करो। जो सेवा विघ्न रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। इसलिए वो कब विघ्न कब आते हैं, जब अपनापन करते हैं, अपनापन रखते हैं सेवा में। इसलिए अपनापन छोड़ गुप्त और सच्चे सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। आज स्लोगन भी वरदान के अनुरूपी है। जो वरदान में बाबा ने बताया उस स्लोगन में अंडरलाइन हो जाती है, हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होगी। हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होंगी। आज का व्यक्त इशारा, आदिकाल अमृत वेले। आज का अव्यक्त इशारे की टॉपिक चल रही है ना, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अमृत वेले से बाबा के प्यारे बन जाओ। अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। और जगह जाता है, माना हमने अमृत वेले से अपने आप को भरपूर नहीं किया है। बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान कर्मातीत। करावन होकर कर्म करो, कराओ। कभी भी मन, बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। अभी आज दादी जी की विशेषता, आज 26 तारीख है ना, दादी जी के तो अनेक अनेक विशेषताएं। वानप्रस्थ स्थिति में रह समय और एनर्जी को सफल करने वाली दादी जी एक मिनट भी एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं करते थे। वो कुछ बैठते थे, खाली होते थे तो भी बहलाकर किसी की सेवा करते थे, या ज्ञान की चिटचैट करते थे, या कोई सेवा के बारे में सोचते थे। दादी जी सदा अपने समय और एनर्जी को सफल करती। उनकी बुद्धि में रहता कि अभी हम सब वानप्रस्थी हैं, हमें व्यर्थ की बातों में, व्यवहारों में अपना टाइम व्यर्थ नहीं गंवाना है। अभी हम दादी जी की विशेषता को सुनते सुनते खुद में भी चेक करते जाएंगे कि दादी जी ने टाइम वेस्ट नहीं किया तो हम तो वेस्ट नहीं कर रहे। लेकिन हम कोई मौनी बाबा भी नहीं है, हमें कर्म क्षेत्र पर कर्म तो करने ही है। कर्म करते हुए योगी के लक्षण हमारे जीवन से दिखाई दे। दादी भले सारा दिन सेवा में रहते थे, कुछ सारा दिन योग में नहीं बैठे रहते थे, लेकिन उनका जो जीवन था वो ही योगी जीवन दिखाई देता था। हमें अपनी स्थिति अचल, अडोल, स्थिर, अखंड और निर्विघ्न बनानी है, क्योंकि अभी हमें पापियों का, अहिल्याओं का भी उद्धार करना है। किसी से भी वैर, विरोध, नफरत आदि नहीं रखनी है। ओम शांति। दीदी आ गए हैं,
ओम शांति। कल हमारी बहुत बहुत प्यारी आदरणीय दादी जी का अव्यक्ति दिवस था। हम सब उसी स्नेह की लहरों में खोए हुए प्यारी दादी से मिलन मना रहे थे। कल भी प्यारे बाबा को, दादी जी को भोग स्वीकार कराया गया। पांडव भवन में दादी जी को अभी भोग स्वीकार कराएंगे। क्यों? क्योंकि कल दादी जी के निमित्त जो कार्यक्रम था उसके लिए बहुत सारे भाई बहने शांति बन गए थे, तो आज हम सब मिल करके दादी के पास जाएंगे, दादी से ऋणवान करेंगे और दादी और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वह भी यहाँ सुनाया जाएगा। और उसके बाद आप नाश्ते के लिए जाएंगे। और बट्टी के भाई बहने, आज से नई बट्टी का शुभ आरंभ हो रहा है। आज बट्टी के जो भाई बहने आए, हाथ खड़ा करें। हाँ, थोड़े पहुंचे हैं, थोड़े अभी पहुंच रहे होंगे और दिन भर में पहुंच जाएंगे। बट्टी के भाई बहने और टीचर्स बहने ध्यान देंगे कि बट्टी वाले सभी भाई बहनों का सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है। और इसके साथ साथ पार्टी में भी आए हुए जो भी भाई बहने हैं, क्योंकि नीचे स्थान नहीं है, तो पार्टी में आए हुए सभी भाई बहनों का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन ऊपर के डाइनिंग हॉल में होता है। शाम की 4 बजे की चाय और मॉर्निंग चाय जो है वो नीचे डाइनिंग हॉल में होती है। और बट्टी के भाई बहनों के लिए आज शाम को 5 बजे बट्टी के भाई बहनों के लिए आज शाम को 5 बजे तिलक विधि से पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में उद्घाटन होगा। तो बट्टी के भाई बहने सभी समय पर ही हॉल में पहुंचेंगे। अभी कल भी पूछा था, आज भी हम जानना चाहेंगे, बहुत सारे भाई बहने जिन्होंने दादी जी को नहीं देखा है, और जिन्होंने, दूसरी बात, जिन्होंने दादी जी की आवाज को नहीं सुना, बात खड़ा करें, दादी की आवाज को नहीं सुना है वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, पहले भोग से पहले हम दादी जी की आवाज सुनेंगे, बहुत ही प्यार भरी, पावरफुल। और दादी तो इतना ही बोलती थी, सिर्फ बोला ही है सबके दिल में छू जाता और सबके सब उस बात को धारण करते और उसको धारण भी करते और कराते भी थे। ठीक है, दादी जी की आवाज सुनो, फिर उसके बाद भोग स्वीकार कराएंगे।
मुरली सिखाओ बड़ी है, ओम शांति। बाबा के मीठे बच्चे, कभी मत भेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से क्या होगा? माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। होता है ना अजगर, किसको कहते हैं? बड़े बड़े मगरमच्छ को बनाया था मगरमच्छ। माया अजगर के पेट में चले जाए, पेट में नहीं जाना। प्रश्न, ये तुम्हारा कामन सत्संग न होने के कारण बाप के किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है? बार बार सावधान करना। उत्तर, यह दुनिया के सत्संगों की तरह सत्संग नहीं है। यहां तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है। पावन बनने में माया के विघ्न जरूर पड़ते हैं, माया के विघ्न भी पड़ते। इसलिए बाप को बार बार सावधान सावधान करना पड़ता, बार बार। बच्चे कभी कुछ भी हो, बच्चे कभी कुछ भी हो, सुख दुख, निंदा उस्तति, भले सुनो भी, परंतु कभी बाप का हाथ नहीं छोड़। भले कोई उल्टी मत देवे, उल्टी राय देवे, मत भेद हो, बाप को नहीं छोड़।
हम सब ने दादी जी के द्वारा मुरली की पॉइंट सुनी, कितना स्पष्ट और दादी जी जब सुनाती थी हर बात दिल को छू लेती और बाबा जो कहते उसको भी बहुत अच्छी तरह से धारण करती और हम सबको भी कराती थी। दादी जी ने क्या नहीं किया है अगर वर्णन करने बैठे हैं, जैसे बाबा के लिए हम कहते हैं, दुनिया कहती है कि सागर को शाही बना लो, धरती को कागज बना लो, वृक्ष को कलम बना लो, तो भी नहीं लिखे जा सकते। दादी की पालना, दादी का प्यार, उनको शब्दों में तो हम लिख नहीं सकते हैं। आज वो पालना प्यार बाबा के साथ जो उन्होंने दिया, वही हम सबके जीवन का आधार है, वही कदम कदम पर प्रेरणा देता है, वही हमको आगे बढ़ाता है। अच्छा, वह भाई बहने जो एक रात के लिए शांतिवन से आए, वो हाथ खड़ा करें। ये सब एक रात के लिए, भट्टी के लिए नहीं है, क्योंकि शांतिवन में भट्टी चल रही थी, एक रात के लिए वेलकम। लेकिन आपको फिर से बता देते हैं, नाश्ता आदि सबका ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में है। अच्छा, फिर से भट्टी वाले हाथ उठाएं जो भट्टी के आए यहां, पांडवन की भट्टी के, शांतिवन की भट्टी के नहीं, जो पांडवन की भट्टी के आए वो भी पहुंच रहे हैं, कुछ नीचे हैं। अच्छा, ओम शांति, वेलकम है, ठीक है। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठते हैं और बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। और आप सब कौन दादी के पास जाएगा भोग लगाने के लिए? जाएंगे सब दादी के पास, सबको जाना है। दादी तो आपके पास पहुंच जाती थी, दादी का मैं याद आता था, कोई मस्ती में बैठे होते थे, चुप चुप आकर के ऐसी दादी खड़ी हो जाती थी, दादी खड़ी होती थी देखती थी, बाद में उनको मालूम पड़ता रही दादी हमारे बीच में है, तो दादी बीच में पहुंच जाती थी। आज भी आपके पास पहुंचेगी, लेकिन आपको देखना होगा कि दादी हमारे सामने है, दादी हमसे बात कर रही है। आज सबको यही अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति।
तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते
शांति। आज सभी की विशेष मधुबन निवासी, मधुबन के सभी स्थानों के भाई बहनों के दादी जी के निमित्त याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में तो चारों ही तरफ बहुत सुंदर सजावट दिखाई दे रही थी, कहां पर बिजलियों की स्टार्स के रूप में चमचमाती हुई दिखाई दे रही थी, कहां पर बहुत सुंदर सुंदर माले चमकती हुई दिखाई दे रही थी, कहां हीरे मोती डायमंड की मालाएं दिखाई दे रही थी, ऊपर से नीचे तक बहुत सुंदर डेकोरेशन थी और बाबा खुद पूरी डेकोरेशन को बहुत प्यार से देख रहे थे, लेकिन दादी दिखाई नहीं दी। मैं जैसे पहुंची बाबा ने कहा, आओ बच्चे देखो कितना सुंदर दृश्य है, जो बाप को भी ये दृश्य बहुत प्यारा लग रहा है। और बाबा सबको बहुत प्यार की दृष्टि दे रहे थे। मैंने कहा, बाबा दादी कहाँ है? तो मेरे को बाबा ने कहा कि ढूंढो दादी कहाँ है। मैं चारों तरफ चक्कर लगाऊं, चारों तरफ देखूं, कहीं भी दादी नहीं दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ, उसी डेकोरेशन में एक बहुत सुंदर वर्ल्ड ग्लोब छिपा हुआ था और उस वर्ल्ड ग्लोब की ऊंचाई भी ऐसी थी, उसके पीछे दादी छिपी हुई थी और दादी का हाथ वर्ल्ड ग्लोब के नीचे था और दादी अपने हाथ में वर्ल्ड ग्लोब को लेकर के देख भी रही थी, मुस्कुरा भी रही थी। कहां कहां दादी क्वेश्चन मार्क की तरह देख रही थी, कहां कहां दादी उसको करेक्शन के रूप में देख रही थी। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, बच्ची देखा प्यारी दादी कहां है? मैंने कहा, बाबा दादी तो यहां है। तो कहां पूछो क्या कर रही थी? तो दादी मुस्कुराती है, दादी कहती है, मालूम है ना, बाबा ने हम बच्चों को ऐसी विशेष जिम्मेवारी दी है कि विश्व का परिवर्तन, विश्व को संपन्न नई दुनिया की स्थापना करना बच्चों का काम है, तो कब तक कितना कार्य हुआ है और कब तक करेंगे वो हम सब, मैं और एडवांस पार्टी के सब रतन बीच बीच में मिल करके आपस में ये देखते हैं और उस कार्य को आगे बढ़ाने में, संपन्न करने में, प्लान के साथ साथ प्रैक्टिकल करने में भी आज की लौकिक दुनिया के जो मेन आधार हैं उनको और ब्राह्मण बच्चों को हम सब उनको गाइड करते हैं और हम चाहते हैं ये कार्य जल्दी संपन्न हो। तो बाबा ये सुन रहे थे, सुनते सुनते बाबा तो पीछे से कहा छिप गए, मालूम नहीं पड़ा। तो दादी और मैं, तो मैंने कहा दादी ये तो डेकोरेशन कितनी सुंदर है। दादी कहती हैं ये डेकोरेशन तो सुंदर है लेकिन ये तो बाबा के घर की है, ये बाबा के ही है सारे। तो ऐसे दादी ने दोनों हाथ किए, इतने भाई बहने थे, इतने भाई बहने थे और दादी सबको डांस करा रही थी, बहुत मुस्कुरा रही थी, एक एक से मिल रही थी। तो दादी देख करके खुश भी हो रही थी और दादी कहती है बाबा की रचना को देख करके इतना खुशी और बाबा से प्यार होता है और हर समय बाबा को मैं अपने दिल में बिठा लेती हूँ। तो बाबा दादी बहुत मुस्कुराती हुई, फिर कुछ समय सबको दृष्टि देते हुए, वरदान देते हुए भरपूर कर रही थी। तो मैंने कहा दादी सभी मिस करते हैं आपको, याद करते हैं। कहती क्यों मिस करते हैं, भूल गए हैं क्या, इनको पता ही नहीं है कि बाबा बीच बीच में हम सबको, खास करके मधुबन और मधुबन के सभी स्थान, देश विदेश के सभी स्थानों पर बाबा ले जाते हैं और सब बच्चों के पुरुषार्थ और उनकी लगन को देख करके बाबा तो क्या हम सब मिल करके बच्चों के पुरुषार्थ के लिए खुश भी होते हैं और हर एक के गुण को देख करके हमें बहुत खुशी होती है। इतने में सब के ऊपर दादी बोल ही रही थी, सब के ऊपर लाइट की किरणों की छोटी छोटी हल्की सी जैसे बारिश की फुहार होती है वो पहुंचती है, तो सारे देखते ये हम सबको क्या मिल रहा है। तो दादी कहती है देखो बाबा कैसे कैसे आकर के बच्चों को सूक्ष्म रीति से वरदान देते हैं और इनकी विशेषताओं को संपन्न करते हैं। तो बाबा को हम सब इतना प्यार करते हैं तो बच्चों को भी बाबा को प्यार करना। फिर बाबा फिर वापस सामने आए तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा कहते क्या रूहान कर रहे थे, दादी ने कहा बाबा एक एक बच्चे की कितनी विशेषताएं हैं। तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे, बाबा ने कहा विशेषताएं तो हैं लेकिन कार्य कब पूरा करेंगे। तो दादी कहती है बाबा ये कर रहे हैं लेकिन अभी इनको बहुत कुछ करना है। तो बाबा ने कहा कि बहुत कुछ तो करना है लेकिन कब तक। फिर दादी कहती है हम सब मिलकर के एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं, उस प्रोजेक्ट में इस व्यक्त लोग के और अव्यक्त लोग के मिल करके ऐसा सूक्ष्म प्रोजेक्ट हो जिसके द्वारा सारे विश्व के अंदर ऐसी ऐसी वाइब्रेशन पहुंचे कि लोग महसूस करें कि हमारे अंदर कोई शक्ति आ रही है, परमात्मा हमें कुछ नवीनता लाने के लिए गाइड कर रहा है। तो दादी ने सबको साथ में लिया और फिर दादी ने वो करके दिखाया, सबको दृष्टि देते ही सबके सब फरिश्ता रूप बने और फरिश्ता के साथ साथ एडवांस पार्टी वाले आगे अर्धचंद्रमा के रूप में थे, बाकी सब भाई बहने फरिश्ता के रूप में थे। तो वो जो किरणें पहुंच रही थी वो सारे विश्व में एक नई क्रांति से दिखाई दे रहा था। तो दादी कहती है अब रुकने का नहीं है, बैठने का नहीं है, एक नई क्रांति हो कि फरिश्ते चारों ही तरफ सारे विश्व में फैल रहे हैं और एडवांस पार्टी वाले भी ऐसे हाथ में हाथ मिला करके सब फरिश्तों को अपने साथ लेकर के लाइट के द्वारा किरणें फैला रहे हैं। तो राधी कहती है अब लाइट की किरणें सारे विश्व में फैलें तब जाकर के बाप की प्रत्यक्षता होगी। फिर मैंने दादी को बोला दादी अभी सबने प्यार से भोग भेजा है, तो दादी तो बहुत खुश, और दादी ने अपने हाथ से भोग उठाया, बाबा को खिलाया, और बाबा ने कहा सब बच्चों को खिलाओ, फिर दादी ने भी सबको खिलाया। तो दादी कहती है कि आज इनको क्या गिफ्ट दें, बाबा से पूछते बाबा इनको कुछ तो गिफ्ट देनी है क्योंकि सबको बुलाया है। बाबा कहते सोचो तुम क्या देना है। तो दादी मुस्कुराते हुए क्या करती है, हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर एक क्रिस्टल की तरह से छोटा सा ऐसा गोल गोल सर्कल जैसा बना हुआ था और उसमें से लाइट निकल रही थी। तो दादी ने ऐसे किया और वो लाइट निकलती उसके वाइब्रेशन चारों तरफ फैलने लगी। तो दादी ने कहा बस अभी यही समय है कि अपने ओरिजिनल बिंदु स्वरूप में टिके, और वो बिंदु कितना पावरफुल है कितना हल्का है, बिंदु तो कहीं भी पहुंच सकता है, तो इस बिंदु की किरणें सारे विश्व में फैलाएं ताकि बाप का कार्य जल्दी संपन्न हो सके। सबको याद दिया, दादी ने कहा हम समझते हैं कि सब भाई बहनों का खास करके बाबा और एडवांस पार्टी के साथ जो प्यार है वो प्यार की तो किरणें वो सब बातें हमारे पास पहुंचती हैं, हम गुप्त रीति से आपस में सूक्ष्म रीति से आपस में मिलते हैं, इस सूक्ष्म मिलन को और मजबूत बनाते जाएं तो हल्के रहेंगे। सबको याद दिया ओम शांति।